देश की सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या ने कई सवाल उठा दिए हैं। हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद होने के बावजूद हमलावर गैंगस्टर तक कैसे पहुंच गए, कितनी बड़ी सुरक्षा चूक है ये, इसके लिए कौन जिम्मेदार, इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार वर्तिका नंदा, जो लंबे समय से जेल सुधार पर काम कर रही हैं और तिहाड़ जेल पर तिनका तिनका नाम से किताब भी लिख चुकी हैं। वर्तिका जी, जेल में ही बंद चार कैदी ग्रिल काटकर बेहद सुरक्षित बैरक तक पहुंच गए और जेल प्रशासन को भनक तक नहीं लगी, कैसे देखा जाए इसे?
देखिए, ये बहुत ही चौंकाने वाली और शर्मनाक बात है। और सबसे ज्यादा जो मुझे चिंता हो रही है वो इस बात पर हो रही है कि तिहाड़ को भारत की सबसे सुरक्षित जेल और मॉडल जेल माना जाता है। पूरी दुनिया से जब भी लोग प्रिज़न के मॉडल को समझने के लिए हिंदुस्तान में आते हैं तो उन्हें सबसे पहले तिहाड़ जेल ही दिखाई जाती है। और भारत भर में भी तिहाड़ को उस मॉडल के तौर पर माना जाता है कि जो जिन प्रैक्टिसेस को तिहाड़ अडॉप्ट करता रहा है वो शायद और जेलों को भी अडॉप्ट करनी चाहिए। तो तिहाड़ एक तरह का समझिए कि जेलों के बीच जेलों का राजा माना जाता रहा था, पर अब वो जो उसकी स्थितियां हैं और जिस तरह की खबरें बाहर आई हैं उसने भारत भर की तमाम जेलों का नुकसान हुआ है, तिहाड़ का तो हुआ ही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जो छवि बनी है भारत की जेलों को लेकर वो बहुत बिगड़ी है और मीडिया की वजह से जो खबरें अलग अलग ट्विस्ट होकर भी आती रही हैं उससे भी ऐसा लगता है कि अब तिहाड़ को अपनी छवि को नए सिरे से गढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। और दूसरी मेरे लिए चिंता की बात यह है कि इस सारे के बीच में खामियाजा उठाना पड़ेगा उन बंदियों को जो आम बंदी हैं। आम से मेरा मतलब है जिनका जो छोटे मोटे अपराधों के लिए आए हों या ऐसे गरीब तबकों से आए हों जहां वो किसी को पहचानते जानते ना हो या फिर जिनके पास किसी भी तरह का कोई रसूख ना हो, वैसे अपराधियों के लिए बड़ी मुश्किल अब होगी जेल के अंदर, क्योंकि जब भी सुरक्षा की बात होती है तो सबसे पहले सुरक्षा उन्हीं लोगों पर बढ़ती है। तिनका तिनका तिहाड़ पर जो मेरा काम हो रहा था और इस बात को तो 10 साल हो गए और पिछले 10-15 सालों में देश भर की बहुत सारी जेलों में मैं जाती रही हूँ, लगातार जाती रही हूँ और तिहाड़ को मैंने इन 10-15 सालों में बहुत तरह से बदलते हुए देखा है। मुझे लगता है कि इस गैंग वॉर का होना और एकदम सुरक्षित जगह पे जहाँ वो था वहां पर अगर दूसरे अपराधी उसी जेल से आकर उसे मार डालते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये चीज रातों रात नहीं हुई है, एक साजिश के तहत हुई है, प्लानिंग के तहत हुई है और जरूर इसमें कुछ लोगों का सपोर्ट सिस्टम था तभी ऐसा हुआ है। और इसलिए ये बात भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सोचनी चाहिए कि तिहाड़ में जो सुरक्षा की लेयर्स बनाई गई हैं, असल में वैसी लेयर्स भारत की किसी जेल में ऐसी हो मुझे ऐसा नहीं लगता। यहाँ पर कई स्तरों की सुरक्षा है। अब मुझे लगता है एमएचई को इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि क्या उन लेयर्स की सुरक्षा तिहाड़ में कारगर है या नहीं है।
बड़ी बात यह है कि पिछले महीने भी जेल में गैंगवार हुआ और गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की हत्या कर दी गई। अब गोल्डी बरार नाम का गैंगस्टर जो है वो इस हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है और हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों से इस तरह की खबरें बाहर आ रही थी कि इस गैंगस्टर को मारने की एक साजिश चल रही है, उसके बावजूद वहां ऐसा लगता है कि कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो गैंगस्टर इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं तिहाड़ जेल के अंदर?
देखिए, ऐसा है कि जेल के अंदर ही बेखौफ नहीं होता है अपराधी। हम सबके आसपास इस समाज में बहुत से अपराधी हैं और वो बेखौफ हैं। वो जब जेल के अंदर जाते हैं उनका बेखौफ होना काफी हद तक इसलिए जारी रहता है कि ना तो उन्हें बाहर की दुनिया से कोई डर था ना जेल की दुनिया में उन्हें कोई बहुत ज्यादा घबराहट होती है, क्योंकि बार बार जेल में आने और जाने वाले लोग जिन्हें हम बोलते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स को जेल की आदत पड़ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जेल के स्टाफ को उनकी आदत हो जाती है। बहुत सी जेलों में मैं देखती हूँ जब शाम के समय बंदी आ रहे होते हैं, नए बंदी, और जो हैबिचुअल ऑफेंडर आता है वो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका तरीका, वो सब बता देता है कि वो एक बार फिर आया है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात है कि बाहर के लोग जो आमतौर पर बिल्कुल समझ नहीं पाते जेल एक ऐसी जगह है जहां काफी सारा खाली समय मिल जाता है लोगों को, खास तौर पर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को। और जो साजिश करने के आदी लोग हैं वो जेल के अंदर जाकर भी साजिशें रचते हैं, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। और इसमें मुझे ये लगता है कि जब हम बाहर की दुनिया में छोटे छोटे अपराधियों की हर अपराध को जब हम नजरअंदाज करते हैं, वो जब बड़ा अपराधी बनता है, जेल के अंदर जाता है, एक और अपराध करता है, तो मीडिया हैरान होता है, संसार हैरान होता है, पूरा समाज बड़ा हैरान होता है। इसमें हैरानी की बात नहीं है, इन सारे छोटे अपराधियों को हम ही लोगों ने बाहर की दुनिया में सींच कर बड़ा किया है, ये सब बड़े हो गए। और बड़े होने के बाद जब वो जेल में गए हैं तो क्या लगता है कि जेल एक दिन में सुधार गृह हो जाएगा? जेल का नाम सुधार गृह जरूर रख दिया गया है, लेकिन जो अपराधी सालों साल बड़ा अपराधी बन चुका है, जब वो जेल के अंदर गया वो एक ही रात में सुधार नहीं आ सकता उसके अंदर। और एक और बात ये कि जेल के अंदर जो खाली समय मिलता है, जिसमें अलग अलग गुटों के लोग कई बार मिलकर जब वो प्लान करते हैं और जेल का स्टाफ भी जब उसके साथ जुड़ जाता है, तब अपराध की टेंडेंसी और भी ज्यादा बढ़ती है। ये मान लेना कि अपराध को अंजाम सिर्फ कुछ अपराधियों ने मिलकर किया, मैं इस बात को बहुत हद तक नहीं मानती। कई बार जेल के अंदर के स्टाफ का एक कनाइवेंस होता है, उनका सपोर्ट होता है, आपस की रेवलरी स्टाफ की भी होती है, स्टाफ की भी कुछ पसंदगियां और नापसंदगियां हो सकती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि कुछ एक लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। और एक चीज और है, आप गौर करिए कि पिछले कुछ सालों में जेल की करप्शन जो है वो बहुत ज्यादा इसने एक सीरियस अप्रोच दिया है तमाम जेलों में, देश भर की बहुत सी जेलों में हम ये सुन रहे हैं कि करप्शन बढ़ा है और उसका असर भी इन अपराधियों के आकार और उसके कद के बड़े होने में उसका एक बड़ा योगदान है।
और ये लगता है उसी का नतीजा है कि इससे पहले भी तिहाड़ जेल में कैदियों के पास से मोबाइल फोन, हथियार मिल चुके हैं, पिज्जा पार्टियां होने की खबरें आती हैं अंदर से, ये सब सामान अंदर कैसे पहुंच जाता है?
देखिए, मैं इसका जवाब आपको दूंगी। अभी 8-9 दिन पहले मैं जेल की विजिट पर गई थी और मैं वहां की कॉन्वर्जेशंस को देख रही थी। वह ये था कि दो पत्रकार, उन्हें कुछ काम था और उन्हें जेल में आना था, और जेल के गेट पर काफी उनकी बहस हो रही थी और उनका ये कहना था कि जेल के हर बंदी के पास मोबाइल है तो हम अपना मोबाइल क्यों नहीं ला सकते। प्रिजन मैनुअल में साफ तौर पर लिखा है जेल के अंदर मोबाइल नहीं जा सकता, लेकिन हम एक पासिंग स्टेटमेंट देते हैं, जर्नलिस्ट भी देता है, बाहर का समाज भी देता है, जेल के अंदर सबके पास मोबाइल नहीं है, जेल में सबके पास पिज्जा पार्टी नहीं होती, जेल में सबको अच्छा खाना नहीं मिलता, जेल में सबको तमाम सुविधाएं नहीं मिलती, ये मिलती है कुछ एक लोगों को। और यही मेरी चिंता की बात है कि एक पासिंग जजमेंट की वजह से अब खामियाजा उन लोगों को उठाना पड़ेगा आज ही से, जिन लोगों ने इस तरह के रसूख का इस्तेमाल कभी किया भी नहीं है और कर भी नहीं सकते हैं, चाहे वो अमीर लोग हों, गरीब लोग हों, उससे परे जो लोग किसी को नहीं जानते हैं, जो एक मामूली बंदी की तरह अंदर हैं, उन्हीं को उसका जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। तिहाड़ के बारे में एक बात और है, अगर आपको याद हो एक बड़ा मामला हुआ था 15-1 साल पहले, और उस समय ये जो नीतीश कटारा का मामला था, और उस समय उनकी ये बात हुई थी कि तिहाड़ के अंदर मोबाइल जो है कुछ इलाकों में काम करता। तिहाड़ एक लंबी जेल है, मैं मंडोली की बात नहीं कर रही, मैं दिल्ली प्रिजन की बात कर रही हूँ, तिहाड़ प्रॉपर की बात कर रही हूँ। उसके कुछ हिस्सों में तब ये कहा जाता था कि यहाँ पर जो है वो फोन अपना फ्रिक्वेंसी पकड़ लेता है, अब तो जैमर्स भी आ गए हैं और सबसे महंगे जैमर्स भी तिहाड़ में लगाए गए हैं। एक समय में शिकायत ये भी होती थी कि ऑटो वाले जेल की दीवार के बाहर से अंदर मोबाइल फेंक देते हैं, लेकिन अब उनकी हैडनेस बहुत बड़ी कर दी गई है। हमने जब तिनका तिनका तिहाड़ को लेकर एक दीवार बनाई थी, वो दीवार आज भी उसका पेंटिंग वैसा का वैसा है, जिसपे लिखा है सुबह लिखती हूँ, शाम लिखती हूँ, मैं चार दीवारी में बैठ तेरा ही नाम लिखती हूँ, ये कविता थी जो तिनका तिनका तिहाड़ में एक बंदी ने भी लिखी थी। हम जब उसको करवा रहे थे तभी मैं ये ऑब्जर्व कर रही थी कि हाँ, तब भी ये पॉसिबिलिटी थी कि बाहर से खड़ा होकर शायद कोई इंसान ऊपर अंदर मोबाइल फेंक सकता है। आज जब आप तिहाड़ को देखिए, सिक्योरिटी बहुत टाइट हुई है, और तब भी अगर मोबाइल जा रहा है इतनी लेयर्स के बाद अंदर, तमिलनाडु पुलिस है खास तौर पर, इसलिए क्योंकि वो हिंदी भाषा ये माना जाता है वो ठीक से नहीं समझ पाएंगे, और वो जो लेयर्स बनाई गई वो इसलिए बड़ी सोच समझ कर बनाई गई, अगर कभी कुछ के पास मोबाइल जा रहा है तो उस पर एक्शन क्या हुआ? देखिए मीडिया की खबर तो वहां तक बनती है 5W1H, कल आपके पास कोई और खबर आएगी आप उस पर ध्यान देंगे, और परसों कोई और आएगी आप उस पर बात ध्यान देंगे, और इसीलिए ये खबरें छूट जाती हैं। कितनी बार जनता को ये पता लगा है कि जिन लोगों की वजह से अंदर मोबाइल आया उन पर एक्शन क्या लिया गया है? हमारी चूक होती है सबसे ज्यादा इस मामले में कि अथॉरिटीज भी जानती है, थोड़े दिनों बाद मीडिया भूल जाएगा, और जनता भी जानती है किसी को कुछ याद नहीं रहेगा
जी।
तो अगर एक्शन स्ट्रांग होगा तो सवाल ही नहीं उठता कि ऐसी घटनाएं बार बार हों और वो भी इस फ्रिक्वेंसी पर हों। तिहाड़ का सॉलिटरी कंफाइनमेंट का एरिया मैंने देखा है, हाई सिक्योरिटी का एरिया मैंने देखा है, बेहद हाई सिक्योरिटी की जगह है, और कई ऐसे बंदियों को मैंने वहां देखा जिनके बारे में लोग हमेशा जानना भी चाहते थे कि उनका जीवन कैसा होगा। उस हाई सिक्योरिटी में अगर किसी को मारा जा सकता है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि देश की सबसे बड़ी जेल अगर सुरक्षित नहीं है तो छोटी जेलों की तो बात ही क्या है।
जी, आप लंबे समय से वहां पर जेल सुधार पर काम कर रही हैं, आपने तमाम लूप होल्स बताए वहां के, तो फिर से ऐसा ना हो तिहाड़ में, सुरक्षा बढ़ाने और स्थितियां सुधारने के लिए क्या किए जाने की जरूरत है?
देखिए, एक तो मैं सबसे जरूरी बात ये मानती हूँ कि बंदियों का एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, कुछ काम में उनका ध्यान रहे, एक तो ये बहुत बड़ी चीज है जो मिसिंग है, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। खास तौर पर ऐसे अपराधी जो शातिर अपराधी हैं, जब उनको समय मिलता है वो ऑब्वियसली स्किलिंग करते हैं, एक तो उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, तिहाड़ में जैसे बहुत सारे और राज्यों में होता है कि वहाँ प्रिजन ऑफिसर्स का एक कार्डर होता है, यहाँ पर जो रैंकिंग है आईपीएस ऑफिसर उसे हेड करते हैं, फिर दानिश के अधिकारी होते हैं, और फिर एक कार्डर है जो कि जेलर के लेवल पर भी है। ये जो अलग अलग विभागों से अधिकारी भी आते हैं, कई बार उनमें भी तालमेल की कमी हो जाती है, और ये तालमेल भी कई बार बाहर के लोग नहीं समझ पाते, लेकिन ये बड़ा सीरियस इशू है। अधिकारियों का आपस में एक नापसंद भी करना बड़ी समस्या की बात वो भी है, इसलिए मुझे लगता है कि अब ये समय है कि हालांकि जेल एक स्टेट सब्जेक्ट है, हर जेल का, हर राज्य का की जेल अपनी प्रिजन मैनुअल के हिसाब से काम करती है, लेकिन तब भी भारत के गृह मंत्रालय को इस पर सोचना चाहिए कि क्या हमने जो ये कार्डर डिवीजन किया है वो कारगर है, और अगर वो कारगर नहीं है तो जो स्टेक होल्डर्स हैं जो डायरेक्टली जेलों को समझते हैं या जेलों के बारे में एक सीरियस समझ रखते हैं, उनकी राय भी ली जा सकती है ताकि जेल के सिस्टम को और बेहतर किया जा सके। एक जमाना ये था कि जो डीजी ऑफिस था उसका एक जो क्लोजनेस थी, जो उसका इंटरेक्शन था जेलों के साथ, वो काफी हद तक कम था। अब तो वो भी समस्या नहीं है, कम्युनिकेशन की समस्या उस तरह से नहीं है, सारी जेलों पे सर्वेलेंस बहुत ज्यादा है, सीसीटीवी कैमराज की संख्या बहुत बड़ी है, फोन की रिकॉर्डिंग का सिस्टम है। अच्छा, एक चीज और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, देश की बहुत सी जेलों में आज भी जो मुलाकातें होती हैं वो इतने कई बार बहुत खुले तरीके से होती हैं। तिहाड़ एक ऐसी जेल है जहां आज भी एक टफन ग्लास वाली मुलाकात होती है, ग्लास के एक तरफ बंदी होते हैं, दूसरी तरफ जो है उसके परिवार के लोग होते हैं, टेलीफोन के जरिए वो बात करते हैं। मतलब मैं ये हैरान मानती हूँ कि एक आम बंदी जिसको कि इतनी भी सुविधा नहीं है तिहाड़ जैसी बड़ी जेल में, वहां भी अगर ऐसा हो सकता है तो ये चिंता की बात है। लेकिन मैं ये भी एक और बात कहना चाहती हूँ खास तौर पर, और मैं चाहूंगी कि इस बात पर खास तौर पर आप जरूर इसको इस्तेमाल करें। इन सब चीजों का असर जैसे एक आम बंदी पर पड़ता है, वैसे ही असर एक ईमानदार जेल अधिकारी पर भी पड़ता है। कई जेल अधिकारी बेहद ईमानदार होते हैं, बहुत सजग होते हैं, सतर्क होते हैं, अपने काम के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। ये दोनों ऐसे लोग हैं जिन पर कि इस तरह की घटनाओं का बहुत बुरा असर पड़ता है, वो खुद एक सवालिया निशान में आ जाते हैं, खुद उन्हें उनका भी जो मोराल है वो बहुत डाउन होता है। तो मैं समझती हूँ कि जेलों को ये बात का ध्यान रखना चाहिए, जो एक आम बंदी है और जो एक सजग अधिकारी है, इन दोनों पर आंच नहीं आनी चाहिए। और जो बड़े गैंग वॉर से आए हुए लोग हैं, जो बड़े अपराधी हैं, उनको लेकर सरकार की सख्ती एकदम से साफ तौर पर छलकनी भी चाहिए और सरकार को साफ तौर पर ये बतलाना भी चाहिए कि अब उन्होंने क्या स्टेप्स उठाए।
जी, देश की सबसे सुरक्षित जेल का जब यह हाल है तो बाकी जेलों की क्या स्थिति होगी, ये आसानी से समझा जा सकता है। वर्तिका नंदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।